हाँ जी
बाबा।
हाँ जी,
जब कल वृक्ष के चित्र पर लिखा हुआ है, मैं संगम पर ब्रह्मा द्वारा।
आप 3-4 महीने पहले कहाँ थे?
माउंट आबू।
यहाँ कह के गए थे, छुट्टी लेके गए थे?
नाम नहीं
है।
नाम नहीं बता।
क्यों? जो 3-4 महीने लगातार नहीं आते हैं उनको फिर भर्ती करनी पड़ती है दोबारा। है
वहाँ तो क्लास डेली,
आपका कोई कनेक्शन नहीं रहा बाबा से?
वहाँ क्लास तो डेली करता था।
ये तो बेकार बात हो गई ना, आपने जहाँ क्लास करते हैं वहाँ से आपने कोई छुट्टी भी नहीं ली, बिना परमिशन के ही कहीं भी चले गए। अभी आप अपनी भट्टी कर लीजिएगा, बाहर लिख के आइए किस किस लिए नहीं आए, क्या बात हो गई, क्यों माउंट आबू क्यों चले गए 3-4 महीने, फिर चले जाएंगे। बाबा ने तो किसी को कहा नहीं कि माउंट आबू में जाके बस जाओ, प्रॉपर्टी खरीदने के लिए जरूर कहा, खरीद के डाल दो, तुम्हारा दिन दुगुना रात चौगुना बढ़ता रहेगा। हाँ क्या पूछ रहे हैं?
वृक्ष के चित्र पर लिखा है, मैं संगम पर ब्रह्मा द्वारा जीवन मुक्ति और शंकर द्वारा मुक्ति देता हूँ।
हाँ जी,
ब्रह्मा द्वारा जीवन मुक्ति।
हाँ
ऐसे लिखती।
उद्धार माने क्या है? हैं? बाप आकर के माताओं के द्वारा उद्धार करते हैं। तो ब्रह्मा का वो कौन सा रूप है? माता गुरु बिगर उद्धार हो न सके। कौन सी माता है? हैं? हैं? वो सारे जगत का उद्धार करने वाला तो शिव बाबा है, लेकिन कराता किसके द्वारा है? माता के द्वारा कराता है। जिन माताओं की बहुत भर्त्सना हो चुकी, जिन्हें बहुत दुर्गति में डाला जा चुका, इतना दुर्गति में डाला जा चुका कि भूल ही जाते हैं, बार बार मुरली में बोलते हैं तो भी भूल जाते हैं कि ब्रह्मा द्वारा दुर्गति कैसे होती है, वो ब्रह्मा द्वारा सदगति कैसे होती है। वास्तव में ये ब्रह्मा तुम्हारी जगदम्बा है, ये मुरली में क्यों बोला? हैं?
याद दिलाने के लिए।
इसलिए बोला कि ब्रह्मा की सोल ही जगदम्बा में प्रवेश करके पूज्य बनती है। दाढ़ी मूछ वाला ब्रह्मा पूज्य नहीं है, क्योंकि पुरुष चोला है, वो भी दुर्योधन दुशासन है, सब पुरुष दुर्योधन दुशासन है। फिर स्त्री चोले में आकर के पूजनीय बन जाती है। जगदम्बा की पूजा होती है, ब्रह्मा की पूजा नहीं होती। और
बाबा, रचयिता का अंत पाया जा सकता है परंतु उसकी रचना का अंत पाना मुश्किल है।
है? रचयिता कौन है?
बाप।
और उसकी फर्स्ट रचना कौन है?
जगदम्बा।
विधिहू ने नारी हृदय गति जानी, जो विधाता है वो भी स्त्री की गति को, हृदय की गति को नहीं जान पाता। ये यहां का गायन है। और
बाबा, अरे बाबा ने मुरली में बोला कि चलते फिरते तीनों ही याद करने चाहिए।
हाँ,
तो वह वो कैसे करेंगे?
वो कैसे याद करे?
नहीं, बाप तो याद है।
बाप याद है?
हाँ,
तो क्यों पढ़ाता नहीं है?
टीचर,
उससे ज्यादा कोई पढ़ाई पढ़ा सकता है?
नहीं,
उसको कोई पढ़ाई पढ़ा सकता है?
नहीं।
तो टीचर क्यों भूल जाते?
नहीं,
बाप तो याद आ सकता है तो टीचर भी याद आ सकता है।
याद आते हैं उसके आधार पर कह सकते हैं, टीचर की याद आती है।
अच्छा, मुरली के पॉइंट जो है वो तो बाप सुनाता है, लेकिन बाप ने जो गीत गाया, गीता आई, उसको क्लैरिफाई कौन करता है? बाप क्लैरिफाई करता है। तो बड़े से बड़ा टीचर भी है, फिर और वो क्यों नहीं याद आता? पढ़ाई पढ़ने से सदगति थोड़ी हो जाएगी। अकेले पढ़ने से ही सदगति हो जाएगी? नहीं। और
बाबा मुरली बोला कि डाली सर्विस की कमाई अगर ईश्वरीय सेवा में जाती है तो भी मन मनावक कहेंगे।
ठीक है, जानते हैं कि डाली सर्विस जिनकी करते हैं और उनसे जो कुछ भी मिलता है, वो अगर हम नहीं लेते हैं तो भी वो सब मिट्टी में मिल जाएगा, डूब जाएगा, डूबती बेड़ी में चला जाएगा। तो उस डूबती बेड़ी से भी हमने मेहनत करके जो निकाल लिया तो उसमें हमारा भाग्य तो बन गया ना। कब? कि जो भी निकाला वो हम ईश्वरीय सेवा में लगा दें, तब। अगर निकाला और स्वार्थ के लिए ही खर्च कर दिया, ईश्वरीय सेवा में कुछ लगाया नहीं, तो फिर भाग्य भी नहीं बनेगा।
बाबा ये बोला हो कि मुझे निरंतर याद करना है। निरंतर याद करो, अंतर ना पढ़ने पाए। बाबा जब याद करते हैं तो बाबा से बात करते हैं याद में, मुरली क्योंकि मुरली का पॉइंट बाबा से पूछते हैं याद में, तो बाबा वो भी निरंतर याद हुई।
क्यों नहीं? बातें करना याद नहीं है, है? माँ को बच्चे की याद आती है, उसकी तोतली बातें याद आती हैं, तो याद नहीं है? हाँ, पराकाष्ठा की याद नहीं है। और
बाबा पराकाष्ठा याद कर सकती है? पराकाष्ठा याद कर सकती है।
पराकाष्ठा माने जिसमें सिर्फ है मैं आत्मा और मेरा बाप ज्योति बिंदु, और वो किस स्वरूप में कार्य कर रहा है, बस वो ही याद रहे और कुछ भी, कोई संकल्प याद ना आए। क्यों? क्योंकि सुप्रीम सोल बाप संकल्प विकल्प करता है? नहीं करता है। हमें भी बाप समान बनना है। जो पहले पहले बाप समान बनेंगे वो पहले पहले बाप के घर में जाएंगे और पहले पहले सृष्टि में आवेंगे। जितना पहले सृष्टि में आवेंगे उतना ही जन्म जन्मांतर ज्यादा सुखी बनेंगे। ऊंच पद पावेंगे। और
शास्त्रों में किशन के साथ राधे को दिखाया है।
हाँ जी,
मंगल राधे की यादगार है।
ठीक है,
लेकिन स्वयं उसका रुक्मणी के साथ दिखा दिया
है।
इसका क्या लेखन में क्या?
स्वयं वरण किसने किया? पहल किसने की? है, राधा ने की या रुक्मिणी ने की? अरे है पहल किसने की स्वयंवर करने कराने के लिए? अरे
दिखाते ना रुक्मिणी को भगा के लेके गया।
हाँ भगा के लेके तो गए, लेकिन संदेश किसने भेजा? रुक्मिणी भेजा ना, तो पहल किसने की? रुक्मिणी ने की। इसका मतलब झुका कौन है? रुक्मिणी। और प्योरिटी झुकती है कभी? प्योरिटी नहीं है तो यूनिटी नहीं है, यूनिटी नहीं है तो शरण लेनी पड़ती है। शरण पड़ी मैं तेरे, ये सब भक्ति मार्ग की बातें हो गई। बच्चे तो बच्चे होते हैं, वो कभी शरण नहीं पड़ते हैं। बाप ने उन्हें अपना बनाया है, रुक्मिणी हो या कोई भी पटरानी हो, राधा के मुकाबले अब भी बिचारी याद और कोई की हो ही नहीं सकती। और अभी भी कृष्ण कौन से वंश का है? हैं? सूर्य वंश का, और राधा चंद्रवंश की है। बाप का डायरेक्शन किसको मिला है कि आवाहन करो? क्यों? इससे क्या साबित होता है कि प्योरिटी सो यूनिटी बनाने वाली है, इसलिए राधा का आवाहन करो। नीचा कौन हुआ, ऊंचा कौन हुआ? है जो नीची स्टेज में है वो आवाहन करता है, या जो ऊंची स्टेज वाला है वो आवाहन करता है? नीची स्टेज वाले को आवाहन करना पड़े। और
मुरली में बोलते हैं ना, जय कृष्ण
है,
जय कृष्ण मुरली में आज बोलो ना, जय कृष्ण,
जय कृष्ण।
वो कौन से कृष्ण के लिए बोलते हैं? संगम देव कृष्ण के लिए, या जो मतलब वो मतलब साधु करते
मुरली में बोलते हैं जय कृष्ण?
नहीं, जय कृष्ण,
जय कृष्ण,
जय कृष्ण। आज ही मुझे बोला ना जय कृष्ण, तो मतलब जय कृष्ण तो फुल मारे मतलब नहीं हो सकता, जय कृष्ण गीता सुना नहीं सकता। आज बोला ना मुरली में
यह कृष्ण,
यह
कृष्ण मना कष्ट के लिए बताया कि जो सतयुग में कृष्ण है या संगम युग में जो कृष्ण की आत्मा है उसके लिए बताइए। वो तो नॉलेज फुल नहीं हो सकता है, नॉलेज फुल। हाँ, कृष्ण कहो या ब्रह्मा कहो, आत्मा एक ही इंट्रोड्यूस होगी या दो आत्मा इंट्रोड्यूस हो जाएंगी? एक ही आत्मा इंट्रोड्यूस होती है। हाँ, इसलिए यह कहा क्योंकि बाजू में ही बैठा है। और
शाली चावल को कहते हैं तो ग्राम शब्द का क्या
अर्थ? शाली चावल को कहते हैं, ग्राम समूह को कहते हैं। समूह माने ग्राम, ग्राम माने गांव, जहाँ समूह इकट्ठा हो जाए उसे कहते हैं गांव, ग्राम। शालिग्राम जब टीका लगाते हैं तो ये टीका जो आत्मिक स्थिति में टिक जाए वो विजयी कहेंगे या हारा हुआ कहेंगे? विजय का टीका है। और जिसने विजय प्राप्त कर ली तो वो युद्ध में जीत गया या हार गया? जीत गया। तो सारा समूह उसका बन गया या अकेला है? उसका बन गया। इसलिए जब टीका लगाते हैं तो एक चावल नहीं लगाते हैं, ढेर के ढेर चावलों का समूह लगा देते हैं। इसलिए शालिग्राम कहा जाता है आत्मिक स्थिति वालों को। अगर देवान है तो कुछ न कुछ इम्प्योरिटी है, इसलिए यूनिटी नहीं बना सकता।
बाबा कहते हैं मैं आत्मिक स्थिति में रहने वाले बच्चों से बात करता हूँ,
ठीक है?
तो बाबा पूरा दिन में बीच बीच में बनती है आत्मिक स्थिति, 24 घंटे वो नहीं बनती।
नहीं बनती तब याद नहीं, तब बात नहीं करता है। जब आत्मिक स्थिति में है तभी बात करता है, और अगर आत्मिक स्थिति में नहीं है और बात की तो वो एक कान से सुनेगा दूसरे कान से निकालेगा।
बाबा याद करने से पहले आत्मिक स्थिति में बैठना है?
बिल्कुल।
तब तो बाबा याद करता है।
हाँ, खुद की ही याद नहीं है तो सुप्रीम सोल की याद कैसे आवेगी?
मुरली में आया है कि तुम्हारी आत्मा की सारी कट निकल जाएगी तो तुम बाप से सन्मुख।
हाँ,
तो अगर कट सारी निकल गई तो
नहीं, वो बेसिक ज्ञान की बात है ना। अभी तो हम एडवांस में चल रहे हैं, तो शुरुआत की पढ़ाई हम पढ़ रहे थे उस समय की बात है। आत्मा की जो कट है वो ऊपर ऊपर कट उतर गई तो क्या अंदर से शुद्ध हो जाएगी? फिर भी तो सोना डाला जाता है ना अग्नि में,
वहां शब्द है ना सारी कट निकलने।
कट माने क्या? गंदगी। जैसे तुम्हारी आत्मा सोना थी तो जो सोना थी इसका मतलब उसमें चांदी और तांबे का और लोहे का अंश नहीं था। अभी आत्मा में चांदी का भी अंश है, लोहे का भी अंश है, तांबे का भी अंश है। अभी अंदर से आत्मा में वो अंश भरा हुआ है, वो जो भरा हुआ है अंदर वो बाहर दिखाई पड़ रहा है? नहीं दिखाई। लेकिन कट
बाहर का उतर
गया, कट बाहर दिखाई देती है। तो बेसिक नॉलेज में जब हम आए तो वो कट थी जो हम आत्मिक स्थिति में रह ही नहीं सकते, हमें आत्मा याद ही नहीं आती थी। अभी हम आत्मिक स्थिति में परिपक्व होने लगे, उसके लिए बताया जब आत्मा की पूरी कट उतर जाएगी तो तुम डायरेक्ट बाप से सीखेंगे। इसका मतलब बी के वाले जो हैं वो अभी भी आत्मिक स्थिति में टिके हुए नहीं हैं। अगर टिक जाएं तो डायरेक्ट बाप से सीखें।
तो कट चढ़ी है संघ दोष से
है? हाँ।
तो वो निकलेगी
तो 63 जन्म जो संघ दोष से कट चढ़ी है वो तो अंदरूनी बात है, संस्कारों की बात है। और
जो ख्वाब में संघ दोष होता है उसमें क्या
है?
ख्वाब में संघ दोष नहीं होता।
हाँ, ख्वाब में,
ख्वाब में
संघ
कहीं ख्वाब में मिलते हैं संघ दोष होता है,
संघ दोष हो जाता है।
हाँ, हाँ।
जो स्वप्न है जो संकल्प है वो पूर्व जन्म की रील घूमती रहती है। पूर्व जन्म में हमने जो भी संग किया है, जो भी हमने कृत्य किया है, वो सारी रील अभी घूम रही है। स्वप्न में भी घूम सकती है, जागृत में संकल्प करते भी घूम सकती है। स्वप्न में घूमती है वो अंतःवाक शरीर है, जिसे सूक्ष्म शरीर कहते हैं। कहां न कहां आत्मा डोलती रहती है स्वप्न में, और संग के रंग में आती रहती है। वो स्वप्नवत है, लेकिन हम जो संकल्प करते हैं वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। स्वप्न के ऊपर भी कंट्रोल किया जा सकता है अगर आत्म की स्थिति पक्की हो जाए तो, फिर स्वप्न आना भी बंद हो जाएंगे। देवान ज्यादा होता है तो गंदे स्वप्न भी आते हैं, कोई कोई को अच्छे अच्छे संकल्प स्वप्न ही आते रहते हैं, बड़े खुश होते रहते हैं अंदर अंदर। हमने बाबा से बात की, सवेरे को उठे तो बड़े हल्कापन महसूस हुआ, बाबा हमें स्वप्न में मिल गए।
ऐसा होता है बाबा के जब रात्रि को ज्यादा टाइम बैठते हैं जाग में,
हाँ,
तो सारी रात फिर स्वप्न भी
अच्छे आएंगे,
अच्छे अच्छे की बजाय बुरे नहीं आएंगे, अच्छे हाँ, ही अच्छे आएंगे।
हाँ जी, हाँ जी। और
जब कोई मनुष्य शरीर छोड़ता है तो उसके मुख में घी क्यों डालते
हैं? अभी हम जीते जी तभी मरेंगे जब हमारे मुख में याद होगी। याद का घृत है, ये याद का घृत है हमारे मुख में पड़ा रहे तो हमारी सदगति हो जाएगी। अंत मते सुगति हो जाएगी, हम पहले पहले परम धाम पहुंच जाएंगे, क्योंकि घी मुख में है ना। घृत किसे कहते हैं? याद को घृत कहते हैं, शुद्ध याद को घृत। नहीं तो तेल है, मिट्टी का तेल भी हो सकता है, मिट्टी माने दे अभी।
बाबा हमारी ऐसी याद कब बनेगी जैसे कि जब भी हम क्लास करने आए हमें ऐसे ही लगे जैसे आप अभी आप बैठे हुए हैं।
बाबा का भी तो हिसाब किताब है
अव्यक्त स्थिति में हमारी।
हाँ हाँ, वो तो अब आए आप, इतना संगठन बड़ा बैठा हुआ है, मोस्टली का लागत लगी हुई है एक तरफ, तो निराकार को तो नशा चढ़ने की बात नहीं है। नशा किसको चढ़े? साकार को नशा चढ़ेगा, वो तो थोड़े समय की बात हुई। चलो आपने आए, आए क्लास में नहीं आए, आप टूर में चले गए साथ में, फिर ये बात चेक करो कि सदैव अव्यक्त स्टेज रहती है या नीचे ऊपर भी होती है। सदैव अव्यक्त में दिखाई पड़ेगा या अव्यक्त में भी देखने में आएगा? क्या होगा? अव्यक्त में भी देखने में आएगा।
बाबा एक मुरली में बोला है कि माता को आत्मिक स्थिति नहीं बनानी, इससे महाकाली का पाठ
है।
आत्मिक स्थिति से महाकाली का पाठ,
आत्मिक स्थिति बनने से महाकाली का पाठ होता है
इस मुरली में।
आत्मिक स्थिति में होने से महाकाली का पार्ट होता है और देवान की स्थिति में होने से लक्ष्मी का पार्ट होता है, महागौरी का।
स्वभाव संस्कार को चेंज करना, स्वभाव संस्कार को चेंज करना आत्मिक।
हाँ, स्वभाव संस्कार को चेंज करना वो तो ठीक है, आत्मिक स्थिति में स्थित रहने से स्वभाव संस्कार परिवर्तन होते हैं। जितना हम आत्मिक स्थिति में रहने की प्रैक्टिस करेंगे स्वतः ही स्वभाव संस्कार परिवर्तन होते रहेंगे, क्योंकि स्वभाव संस्कार जो आते हैं भिन्न 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 प्रकार के, वो तो अनेक प्रकार के देहधारियों के संग के रंग से आए, वो संग का रंग छट जाएगा जब हम आत्मिक स्थिति में रहेंगे।
बाबा छोटी माँ का सभी आवाहन कर रहे हैं अमृत वेले
हैं,
छोटी माँ का सभी आवाहन करते हैं अमृत वेले।
अच्छा,
तो उनको याद करने से,
याद करने की किसी ने बोला
याद नहीं है आएंगी
कब तक? जब आपका आवाहन पक्का होगा। हाँ,
ओम नमः शिवाय में भगवान शिव कहते हैं उसमें
है?
ओम नमः शिवाय में शिव ने कहा है
हाँ?
कि भक्त जो है भगवान को बहुत प्रिय होते हैं
हाँ?
और भगवान भक्त के वश में होते हैं।
हैं?
यहाँ पर कैसे टैली कर सकते हैं?
यहाँ पर इस बात को टैली कैसे करें? जिनकी बुद्धि भगवान के पीछे ही भागती रहती है। अच्छा, भगवान को व्यभिचारी भक्त प्रिय होते हैं या अव्यभिचारी भक्त प्रिय होते हैं? तो जिनकी बुद्धि सिर्फ भगवान के पीछे ही भागती रहती है और किसी के पीछे नहीं भागती, एक भगवान के ही वचन सुनने में जिनकी बुद्धि लगती है, भगवान का ही ज्ञान सुनने में बुद्धि लगी रहती है और किसी का ज्ञान सुनने में उन्हें रस नहीं आता, तो भगवान किसको प्यार करेगा? तो है नहीं ऐसे, ब्राह्मणों की दुनिया में ऐसे नहीं है, है? और कोई ज्ञानी है क्या? अभी ज्ञानी है तो उसको ज्ञान होना चाहिए पहले अपनी आत्मा के 84 जन्मों का, है कोई ऐसा ज्ञानी? तो सब क्या है, है? अभी सब क्या है? भक्त नहीं, भक्ति ही।
बाबा पहले मनन चिंतन मंथन की स्टेज बनती है, फिर बनती है निराकार स्टेज। मनन चिंतन मंथन में किसी के साथ बात करने का मन नहीं करता, बस बाबा की मुरलियों का ही मनन चिंतन मंथन चलता है।
तो
बाबा जी मनन चिंतन मंथन की स्टेज 5 साल तक चलती है, कितनी देर
है?
कितनी देर तक चलती है ये मनन चिंतन मंथन फरिश्ता की?
ये तो अपने को देखना है कि हम फरिश्ताई स्टेज में कितने रहते हैं, फर्श की दुनिया वालों में बुद्धि कितनी लगती है और फर्श की दुनिया से परे बुद्धि कितने टाइम रहती है, वो दूसरा क्या जानेगा। हाँ, अवस्था से पता चल सकता है,
कर्म करते देह के अपने जो
कर्म करते भी फरिश्ताई स्टेज रह सकती है क्या?
अगर वो घर जो अपने बाल बच्चे हैं वो ना के बराबर याद आए,
ठीक है,
बहुत कम याद आए
हाँ?
तो अवस्था अच्छी चढ़ती होती है।
कम याद आए इसका मतलब याद तो आते हैं ना,
बहुत कम,
तो पूरा फरिश्ता नहीं बना ना 100%। 100% फरिश्ता तब कहे हैं जब कोई देहधारी में लगाव न लगे।
नहीं बाबा, लगाव तो नहीं, लेकिन उनको खाना बना के खिलाना
उनका। अरे ये किसने कहा कर्म नहीं करना है?
महबूब होता है, महबूबा की याद में रहता है, क्या कारखाने में काम करना छोड़ देता है?
नहीं करता
है। करता है ना, तो ऐसे ही कर्म करना है।
चिंता तो नहीं होती किसी की, लेकिन
जब बुद्धि में बैठ गया ड्रामा बना हुआ है
हाँ।
पक्का बैठ गया ना, तो चिंता ताकि कीजिए जो आना होनी हो। चिंताएं तो सब बाबा ने खत्म कर दी ना, वो ही होगा
जो ब्रह्म में होगा,
जो कल पहले हुआ होगा। चिंता क्यों करना, पुरुषार्थ करना।
एक मुरली में बाबा ने
और चिंता किसकी करें। कलयुग के अंत में तमो प्रधान संबंधी मिलते हैं या सतो प्रधान मिलते हैं, दुखदाई मिलते हैं या सुखदाई मिलते हैं। सबसे ज्यादा दुखदाई संबंधी कलयुग के अंतिम जन्म में मिलते हैं, तो उनकी चिंता करना या जिन्होंने बहुत सुख दिया है उनकी चिंता करना,
जिन्होंने सुख दिया
उनका करना।
मेरा मतलब कि उनकी याद बिल्कुल ना आए ना कि ब्रदर।
आप तो बुद्धि में बैठ गई बात कि किसको याद करना है किसको नहीं करना है, किसकी याद से फायदा है किसकी याद से नुकसान है। ये यही इच्छा है कि अंतिम जन्म में जो संबंधी मिले हैं वो जन्म जन्मांतर हमें मिलते रहे।
वो कभी ना मिले
आया है, है?
वो कभी ना मिले,
अभी तो मिलेंगे संगम में तो
आखिरी जन्म में तो मिलेंगे, मिलेंगे। लेकिन आप उनसे पीछा छुटकारा चाहिए या उनसे और लगाव बढ़ाना है। अभी संबंध जोड़ने का टाइम है या तोड़ने का टाइम है, तोड़ने का टाइम है।
बाबा ये भी तो कहा ना कि उनका उद्धार,
देखो ये हमारा कर्म है, हमारा कर्तव्य क्या है, हमारा कर्तव्य है अपकारियों के ऊपर भी उपकार करना। तो जिन अपकारियों पर हम उपकार कर रहे हैं उनसे लगाव लगाना जरूरी है।
बाबा पूर्व जन्मों में हमने इनके साथ जरूर बुरे कर्म किए हैं जो हमारे लिए जो बंदी बन के आए हैं।
पूर्व जन्मों में माने द्वापर के आज से लेकर ये तुम्हारे संग हैं?
नहीं,
ये ऐसा तो नहीं है।
नहीं,
शेष संकल्प करो कि इससे पहले वाले जन्म में हमने इनको ज्यादा दुख दिया होगा तो ये हमको दुख दे रहे हैं जन्म में, हिसाब किताब पूरा हो रहा
है। हमारा मतलब है कि ये सिर्फ लास्ट जन्म में हमारे साथ हो, लेकिन 84 जन्म में हमारे साथ नहीं चाहिए।
चाहिए ये तो आपके हाथ में है, आप जैसा संकल्प करेंगे वैसा बनेंगे। संकल्पों से सृष्टि रची ब्रह्मा ने, तो ब्राह्मणों ने संकल्पों से सृष्टि नहीं रची। हर ब्राह्मण एक सितारा नहीं है, हर सितारे में एक एक सृष्टि नहीं समाई हुई है। कहते हैं उन सितारों में एक एक दुनिया है, तो क्या हम आत्मा रूपी सितारों में हमारी दुनिया नहीं है? अरे 84 जन्मों में 500 करोड़ के संग में तो सब नहीं आ सकते। हाँ कुछ लोगों कुछ आत्माओं के संग के रंग में आएंगे ना, तो जिन जिन के संग के रंग में जब जब हम आए हैं वो हमारी आत्मा का पार्ट नुदा हुआ है, वो ही संबंधी वो ही संपर्की जो है वो ही हमारी दुनिया है। अब हमारी जो दुनिया है वो दूसरे की दुनिया थोड़ी हो सकती, इनकी अलग दुनिया होगी, इनकी अलग दुनिया होगी, उनके अलग संपर्की संबंधी होंगे संसर्गी होंगे, हमारे अलग होंगे। तो ये हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम कैसी दुनिया अपनी बनाते हैं। हाँ
बाबा कुछ बच्चे तो ऐसे भी हैं जिनका ही साल काल जल्दी खत्म हो जाएगा। बाबा ने बोला हुआ घर में रहने वाले भी ब्रह्मा कुमारियां हैं, आगे चल के उनके भी हिसाब का कट जाएंगे, वो भी छुटेली हो जाएंगे।
हाँ तो
बाकी संकल्पों के ऊपर ही डिपेंड है।
बिल्कुल
जितने श्रेष्ठ संकल्प करेंगे
जैसे संकल्प करेंगे।
बाबा ने मुरली में यह बोला है कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि उनकी बुद्धि मिनिमम ध्वन में लगी रहती है, जब तक वो वहां पहुंचना जाए तब तक उनको वहां जाके ही शगुन मिलता है।
ठीक है, मधुबन बाबा का घर है ना,
तो ऐसे
मधुबन मधुसूदन का घर है ना, तो वहां बुद्धि लगी रहे तो खराब क्या है?
तो उनके बंधन जल्दी कटेंगे।
बिल्कुल सही बात है, और कोई ऐसे हो جن کا بابا ہی مدھوبن ہے. جہاں جہاں بابا ہے وہاں وہاں مدھوبن ہے, تو ان کی تو اور جلدی کٹنی چاہیے. جیسے ابھی ابھیکت وانی میں بولا, باپ دادا بچوں کے بغیر نہیں رہ سکتے, بچے باپ دادا کے بغیر نہیں رہ سکتے, تو کون سے بچے ہوں گے؟ ضرور ایسے بچے ہوں گے جن کا ساکار میں کنیکشن اگر بابا سے کسی دن نہیں جڑے گا تو انہیں تلخی لپن محسوس ہونے لگے گا. کچھ ایسے بھی ہیں مہینوں بابا سے بات نہ ہو تو بھی ان کو کچھ نہیں ہوتا, مہینوں بابا کا ملنا نہ ہو تو بھی ان کو کوئی آتر ویلا پیدا نہیں ہوتی, ہے یا نہیں ہے؟ تو اسے کیا ثابت ہوتا ہے؟ کم پیار ہے. ایسی بات نہیں ہے. لکشمی کو اگر نارائن سے ساکار میں سمپرک سمبندھ سنسرگ نہیں ہوتا ہے تو پراپتی کم ہوگی.
جن میں دیو بان ہوگا ان کو ساکار میں ضرورت پڑے گی.
مانے لکشمی آتما بھی مانی ہے, پھر بیسکوں کا ایک لیے پڑی ہوئی ہے. اگر آتما کی کٹ اتر چکی آتما ابھیمانی ہے تو باپ سے ڈائریکٹ کنیکشن ہونا چاہیے, ڈائریکٹ باپ ملنا چاہیے یا نہیں ملنا چاہیے؟
دورا پر سنکلپ تو لکشمی نارائن کے سنکلپ تو ایک ہی ہے.
لکشمی اور نارائن سنکلپ ایک ہی ہے. ارے ایک ہی سنکلپ ہے کیسے؟ ارے وہ آتما نارائن سے گیان دھن لینے والی اور نارائن اس کو دینے والا, تو لینے اور دینے والے دونوں کے سنکلپ ایک ہی ہوتے ہیں. ہوتے ہیں پھر
انایاسی بچوں کے سبھی کرم بندھن چپت ہو جائے.
ٹھیک ہے, تو یاد کرتے کرتے کوئی تو ایسا کھن آئے گا جو جتنی آتماؤں سے ہمارا سنسرگ سمبندھ سمبندھ بنا ہے 63 جنموں میں وہ سب چکتو ہو جائے گا. تو وہ کھن انایاس ہی آئے گا یا پہلے سے ہمیں پتہ لگ جائے گا؟ انایاس ہی آئے گا.
ٹھیک, ایسے ہی جیسے انایاس ہی ہمیں بھگوان مل گئے.
ہاں وہ بھی حساب کتاب ہے, کسی کو پہلے مل گیا کسی کو بعد میں مل گیا, وہ بھی حساب کتاب. کسی کو بعد میں مل گیا تو بھی وہ لاسٹ سو فاسٹ جاتا ہے, اور کسی کو پہلے مل گیا تو بھی کچھوے کی چال چل رہے ہیں دھیرے 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 دھیرے. یہ سب حساب کتاب ہے.
بابا سے کچھ پوچھنا ہو تو ہم جیسے کہ ٹی وی لگاتے ہیں, مرلی لگاتے ہیں, تو بابا سے پہلے بولتے ہیں, سنکلپ کرتے ہیں, بابا ہمیں اس بات پر یہ بات چاہیے, تو مرلی میں ڈرک مل جاتی ہے. تو بابا وہ بھی بالکل صحیح, جیسے اسی ٹاپک میں بابا بول دیتے ہیں
اور آپ کو سنتوشٹی ہو جاتی ہے,
تو فون کی ضرورت ہی نہیں پڑتی. جیسے بابا نے بولا نا فون.
ठीक है ठीक है ठीक है। कभी ऐसा भी होता है कि आपको जिस प्रश्न की जरूरत है उत्तर की, वो मुरली में समाधान तो मिलता है लेकिन पूरा समाधान नहीं मिलता।
अभी तक तो पूरा मिलता है,
अभी तक पूरा समाधान मिलता है। मैंने बाबा के सामने आपको आने की जरूरत नहीं है पढ़ाई के लिए, आपकी पढ़ाई पूरी हो गई।
घर में रहते रहते अगर जरूरत पड़ती है,
हाँ तो घर में बैठे बैठे सब समाधान जब मिल जाते हैं तो सन्मुख जाने की जरूरत नहीं।
सन्मुख भी मिलना पड़ता है,
क्यों? टीचर के रूप में तो नहीं मिलेगा, जरूरत ही नहीं।
साकार से मिलना होता है,
हाँ साकार से मिलो, बाप के रूप में, सदगुरु के रूप में, टीचर के रूप में तो आपको दरकार नहीं।
बाबा ने बोला कि मुरली ऐसे सुननी है कि जैसे हम साकार में सुन रहे हैं मुरली।
ठीक है सुनो, हाँ भक्ति मार्ग में क्या करते हैं, मंदिर में जाकर के मिलते हैं, भगवान की मूर्ति सामने रखते हैं तो ऐसे देखना है जैसे साकार में भगवान हमारे सामने बैठा है, यही तो भावना करते हैं। वो सिर्फ भावना मात्र है या प्रैक्टिकल भी है? भावना मात्र है। भावना के आधार पर साक्षात भगवान का साक्षात्कार हो जाता है, इतनी गहरी भावना बैठ जाती है। बाबा जैसे कि आप मुरलियों में मुस्लिम धर्म को विधर्मी कहते हैं, माना विपरीत धर्मी कहते हैं, और उनके एक्ट द्वारा भी ये बात साबित होती है, फिर भी ऐसा संगम पर कौन सा पुरुषार्थ उन आत्माओं द्वारा होता है जिससे आत्माएं उन मुसलमानों से प्रभावित हो जाती हैं और प्रभावित होकर के मुस्लिम धर्म में कन्वर्ट हो जाती है, वो खास बात कौन सी है? हाँ वो एक को पकड़ने में परिपक्व है और एक में भी निराकार को पकड़ती है, साकार को नहीं पकड़ती। अगर साकार को पकड़ने वाली भी है तो जरूर वो इस्लाम धर्म में पहले जावेंगी, शुरुआत से ही द्वापर युग से ही आ जावेंगी, नहीं तो मोहम्मद जब आता है तब आवेंगे।
ईद शब्द का क्या शाब्दिक अर्थ है? ईद शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है?
जब भक्ति मार्ग में मुसलमानों की भक्ति मार्ग जो है उस भक्ति मार्ग में सबसे खुशी का दिन कौन सा होता है? ईद, उसके बाद बकरीद, सबसे खुशी का दिन ईद। ई शब्द जब मुंह से निकलता है तो कठिनाई पूर्वक आत्मा अनुभव करती है या खुशी का अनुभव करती है? कठिनाई का अनुभव करती है। माने कोई ऐसा भी क्षण आत्माओं के जन्मों में एक जन्म में आता है जो उन्हें बड़ी कठिनाई होती है, जैसे बाबा ने कहा है ये इस्लामी सबसे पहले मरेंगे, तो जब मरेंगे तो उन्हें जो सबसे प्यारी चीज होगी वो द देनी पड़ेगी ना,
कुर्बानी
देनी पड़ेगी, तो उनके मुंह से ई निकल जाता है। ज्ञान मार्ग में वो ईद वास्तव में खुशी की बात है, लेकिन वो खुशी आने से पहले आत्मा को थोड़ी मुश्किल या अनुभव होती है। और बताओ वो क्या चीज है जो उन्हें देने में बड़ी मुश्किल आती है?
देवान
वो तो सेकेंडरी चीज है, उनके सेकेंडरी त्योहार है, उसे कहते हैं बकर ईद। क्या हाँ, बकरा होता है देवान की निशानी, मैं वो देवान छोड़ना वो सेकेंडरी बात है, लेकिन उससे भी बड़ी चीज छोड़ना उनके लिए कौन सी मुश्किल
काम विकार
है। काम विकार में भी जिनसे उनका लगाव लगा पड़ा है, जिनकी सुरक्षा के लिए वो जानमारी करते रहे, युद्ध में जाएंगे तो भी साथ लेकर के जाएंगे। क्या उनको छुपा छुपा के रखेंगे हर समय, इसे क्या साबित होता है कि उन्हें सबसे ज्यादा प्यारी चीज कौन सी है? वो ही देह का लगाव है। और ओ हाँ जी
बम्बई
में एक शेर को पालने वाला साधु है,
उसका नाम नहीं बताया। हाँ, वो एक बार शिमला में ही शेर को ले गया।
हाँ,
परंतु हर शेर को पालता था, परंतु
है
हर शेर को पालता था परंतु था बहुत बेचारी।
बल शेर को पालता था लेकिन
बहुत
व्यभिचारी था। हाँ,
फिर शादी करके बच्चे आदि भी पैदा कर लिए।
है, शादी करके बच्चे भी पैदा कर लिए। इसका अर्थ तो हद की दुनिया में तो कोई अर्थ की बात ही नहीं, वो तो बाबा ही ने बता दिया है।
शुरू में उनके पास बड़े बड़े आदमी आते थे,
है
ऐसे
सन्यासियों
के लाखों
फॉलोअर्स हैं। तो शुरू में लाखों आदमी आते थे, बड़े बड़े आदमी आते थे, इसका मतलब बाद में आना बंद कर दिया? बाद में फिर नहीं आए, जब उसने शादी कर ली नीचे गिर गया। ब्राह्मणों की दुनिया में बाबा ने कहीं इशारा दिया कोई साधु है जो शेर को पालता है? ऐसे शेर को पालना बहुत कठिन बात है, है
तो मेरे जाना तो पसंद
है। खूंखार जानवर होता है, वो उसे पालता था, ये बात कहां लागू होती है ब्राह्मण परिवार में? मंथन करेंगे तो निकल आएगा है, हर बात तुरंत थोड़ी बताई जाती है। है? अच्छा, भक्ति मार्ग में शेर की सवारी कहीं दिखाई है? है? नहीं दिखाई है? जगदम्बा की शेर की सवारी दिखाई है? तो जगदम्बा का जो पार्ट है वो वास्तव में किसका पार्ट है? ब्रह्मा बाबा का पार्ट है। तो ब्रह्मा बाबा की सोल जब जगदम्बा में प्रवेश होकर के पूजनीय बनती है, तो दाढ़ी मूछ वाला ब्रह्मा तो पूजनीय नहीं है, लेकिन जगदम्बा में प्रवेश करके जब ऐसा पार्ट बजाता है तो किसके ऊपर सवारी करता है? शेर के ऊपर। शेर भी कौन सा है? बाघम्बरी। दो तरह के शेर होते हैं, एक होता लायन बड़े सिर वाला और एक होता है टाइगर। सिर तो उतना बड़ा नहीं होता है लेकिन शरीर बहुत बड़ा होता है, फूल जाता है जब हमला करता है। तो कोई किसी के ऊपर नाराज होता है ना तो जोर से सांस लेकर के छाती चौड़ी कर लेता है। तो समझ में आ जाना चाहिए कौन है वो टाइगर जिसका हमारे देश में राष्ट्रीय पशु के रूप में सम्मान दिया जाता है। है? हाँ भी बताए सब। अब तो बहुत आसान कर दिया। पहले वो साधु था, स्वाद के बारे में कोई ज्यादा ललक नहीं थी, फिर बाद में क्या कर लिया है? अरे बाद में क्या कर लिया? शादी कर ली। किसने शादी कर ली? अरे पार्ट किसका है? पार्ट बजाने वाला जो रूप है वो किसका है और उसमें पार्ट बजाने वाली आत्मा कौन है? रूप है जगदम्बा का, पार्ट बजाने वाली आत्मा ब्रह्मा की। तो जगदम्बा के रूप में जो पार्ट बजाया, पहले तो क्या पार्ट बजाया? साधु था या सवाधु था पहले? है पहले तो साधु था ना, फिर बाद में स्वाद लिया शादी का। शंकर को बैल की सवारी दिखाते हैं, गंगा को घड़ियाल की सवारी दिखाते हैं, कार्तिकेय को मोर की सवारी दिखाते हैं। तो सवार होना माना क्या है? कंट्रोल कर लिया। और
वाला
वो पॉइंट है जो पिछली बार पूछा था। सब बेहद की बातें होती हैं, ज्ञान की बातें होती हैं, वो स्थूल बातें खाने पीने की तो है नहीं। ज्ञान में जन्म लेते ही हिम्मत उमंग उल्लास आ जाती है तो कोई ताकतवर चीज मिलती है तभी तो आ जाती है, ऐसे ही आ जाती है। तो वो आज भाई लोग सब चुप बैठे हैं। भक्ति मार्ग में तो जो गुरु होते हैं वो कोई भगवान तो होते नहीं है। गोविंद को भगवान कहा है और यहाँ ज्ञान मार्ग में तो गुरु भी हैं और गुरु ढेर के ढेर हैं, जैसे भक्ति मार्ग में ढेर होते हैं और गोविंद भगवान भी है। लेकिन भगवान तो निराकार है या साकार है वास्तव में? है निराकार है, तो निराकार को मिलाने के लिए मीडिया तो चाहिए। निराकार भगवान की पहचान देने के लिए जो मीडिया चाहिए वो गुरु है, वो सदगुरु नहीं है। क्योंकि भगवान कहते हैं मेरी पहचान मेरे सिवाय कोई दे ही नहीं सकता। तो यहाँ बात अलग हो जाती है। जैसे बेहद के दो बाप हैं, एक मनुष्य सृष्टि का बाप और एक आत्माओं का बाप। जो आत्माओं का बाप है वो ही भगवान है, गॉडफादर है, इनकॉर्पोरियल है, निराकार है, निराकारी निर्विकारी निरहंकारी है और सदैव है। लेकिन उससे मिलाने वाला शख्स कौन? है उससे कौन मिलाता है? साकार वो कौन? गौ माने इंद्रियां, इंदु माने राजा, जो इंद्रियों पर कंट्रोल करने वाला है, इंद्रियों का शासक है। पहले पहले वो इंद्रियों पर शासन करता है। शिव को तो इंद्रियां है ही नहीं, उनके शासन करने की बात ही नहीं। बात पूरी समझ ली है? गुरु कौन हुआ और गोविंद कौन हुआ है? अरे बोलते भी हैं, श्लोक बोलते हैं, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वर, गुरु साक्षात परम ब्रह्म। वो परम ब्रह्म तो है लेकिन साक्षात है, साक्षात मिल गया, साक्षात्कार हो गया। तो गुरु कौन हुआ? है प्रजापिता ब्रह्मा हुआ है। ब्रह्मा, ब्रह्मा के मुख से वाणी न निकली होती तो उस वाणी पर मनन चिंतन कौन करता? हो पाता मनन चिंतन? नहीं। तो बीच में पहले पहले गुरु आता है ब्रह्मा। ब्रह्मा की वाणी से ही भगवान की पहचान होती है। उसे कहते हैं वेदवाणी। फिर कहेंगे एक वाणी तो 1968 तक निकली, और 1968 तक जो भी वाणी निकली मुरली ब्रह्मा के मुख से, 1968-69 में ब्रह्मा ने शरीर भी छोड़ दिया, वाणी तो चली लेकिन क्या किसी की समझ में आया है? है? समझ में तो किसी को नहीं आया ब्रह्मा कुमार को कि कौन सा भगवान बाप प्रत्यक्ष होने वाला है। 1976 में बाप का प्रत्यक्षता वर्ष भी भले कि बहुतों ने मनाई लिया, तो सभी ब्रह्मा कुमारों को तो नहीं समझ में आया। जो एडवांस में आते गए उनको समझ में आता गया नंबर वार। तो वहां के लिए भी बाबा ने तो बोला ही हुआ है। सेवा कौन करते हैं, बच्चे करते हैं कि बाप दादा? और बाप दादा अव्यक्त हैं कि व्यक्त हैं? है व्यक्त हैं तो भी अव्यक्त में भी व्यक्त में भी अव्यक्त हैं, और अव्यक्त तो हैं ही। इसलिए बाप और दादा कंबाइंड हैं।